सिया राम पतित पावन जय सिया राम
पतित पावन जय सिया राम
पतित पावन जय सिया राम
श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
बोलिए सभी बोलो
राम जय राम जय जय राम
पतित पावन जय सिया राम
पतित पावन जय सिया राम
जानकी बल्लभ 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 जय सिया राम
राम जय राम जय जय राम
श्री 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 राम जय राम जय जय राम
जानकी बल्लभ जय सिया राम
जानकी बल्लभ जय सिया राम
रघुपति राघव राजा राम
रघुपति राघव राजा राम
श्री राम जय राम जय जय 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 राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल
हरे कृष्णा
करवा दो क्योंकि गला खराब हो जाता है
पंखा
के ना उड़ता है श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण
श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण
Jai Ram 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 जय राम
राम राम जय राम
ओ रघुपति राघव राजा राम
रघुपति राघव राजा राम
ओ जानकि वल्लभ जय सिया राम
जानकि वल्लभ जय सिया राम
ओ श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम
राजा रामचंद्र की जय
हमारे जेसीसी के मेंबर प्रशीला जी स्वागत करें
हरे कृष्ण
गंभीर साहब सरकार प्रभु
उनका नाम है सरकार
हो गया तो उसका
रामचंद्र प्रभु
वृंदावन से आए
हरे कृष्ण
हरे
कृष्ण जय
श्री जय इसको बंद करवा दो
एसी बंद करो
ये हवा आती है
एसी बंद करो
तो आज अयोध्या कांड की लीला आरंभ होती है भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई अपने अपने धर्मपत्नी के साथ वापस अयोध्या आ गए हैं और गृहस्थ आश्रम का आनंद उठा रहे हैं अयोध्या में आकर के अब यहीं से कथा आरंभ होती है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो जब भगवान श्री राम सीता जी के साथ अर्थात चारों भाई अपनी धर्मपत्नी के साथ पूरे बाराती वापस आ गए अयोध्या में तो पूरे अयोध्या में एक उत्सव जैसा माहौल हो गया कि देखिए गए थे राम और लक्ष्मण है ना, लेकिन जब वापस आए तो डबल बन करके आए और 10 दिन के अंदर ही पूरा दृश्य जो है बदल गया, क्योंकि विश्वामित्र जी सिर्फ 10 दिन के लिए मांगे थे भगवान राम और लक्ष्मण को, लेकिन 10 दिन के अंदर शादी ब्याह हो करके भगवान अयोध्या वापस आ गए। तो भगवान का जो आकर्षण है वो अपने चरम सीमा पर रहा उस समय। भगवान के जो दिव्य गुण हैं उससे पूरे अयोध्यावासी भगवान के प्रति समर्पित होते चले गए। भगवान का सबसे गुण है आत्मसंयमी। भगवान श्री राम बहुत ही संयमित जीवन बिताते थे, अपने आप पर बहुत ही कंट्रोल नियंत्रण रखते थे भगवान श्री राम, है ना, इसलिए उनको आत्म संयमी कहा गया और आत्म संतुष्ट। भगवान हमेशा आनंद में रहते थे भगवान श्री राम सदैव, और सबका ख्याल रखते थे, ईर्ष्या रहित। भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते कभी भी। भगवान राम से एक गुण अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग जो कथा सुनने आए हैं इन गुणों को अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। हम सबको क्या बनना चाहिए, आत्मसंयमी बनना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, इससे ये शिक्षा मिलती है। क्योंकि अगर हमारे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण ये बहुत आवश्यक है। गीता में भगवान यही कहते हैं कि काम क्रोध लोभ ये सब क्या है, नरक के द्वार है। ईर्ष्या द्वेष जलन है ना, ये सब हमारे विकार हैं जो भगवान की भक्ति में सबसे बड़े बाधक हैं। तो यदि हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अंदर से अहंकार सबसे खतरनाक अहंकार है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, आप लोग सभी जानते हैं, उत्तम कुल पुलस्त करना थे, बहुत ऊंचे खानदान का था, लेकिन अहंकार वश उसकी क्या हुई, दुर्दशा हुई। तो पंडित हो करके विद्वान हो करके यदि आप आत्म नियंत्रण नहीं है, है ना, और आत्मनियंत्रण का सबसे महत्व वस्तु है जिह्वा। रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर समझाया है कि जिह्वा बेगम उदर उपस्थ है गम। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, आत्मनियंत्रण करना चाहते हैं, आत्मस्वयं बनना चाहते हैं तो अपनी जिह्वा पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। भगवान राम को आत्मसंयमी कहा गया क्योंकि भगवान जब भी बोलते थे बहुत ही मधुरता से बोलते थे, कभी भगवान गुस्सा होकर के बोले ही नहीं, क्रोध किया ही नहीं। जैसे कल कथा में आपने सुना कि परशुराम से लक्ष्मण से कितनी तीखी बहस हुई, लेकिन भगवान राम जब भी बोले, एक दो बार ही बोले, लेकिन जब बोले बहुत ही मधुरता से। आप जानते हैं जहां प्रेम होता है नहीं, वहां आवाज धीरे निकलती है, ऐसा छ नहीं। जहां प्रेम नहीं होता है, आपस में डिस्टेंस होता है, वहां पे आवाज ऊंची से आदमी बोलता है, क्योंकि वहां प्रेम नहीं होता। ये आप अपने घर में आजमाते हो कि जब आप लड़ाई करते, झगड़ा करते हो, उसमें प्रेम नहीं होता, इसलिए पास में रह करके इतना चीखते चिल्लाते हैं जैसे वो बहरा सुनाई नहीं देता, राइट? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं है। जहां प्रेम नहीं होता वहीं पे आवाज ऊंची निकलती है, जहां प्रेम होता है वहां आवाज धीमी निकलती है। इसलिए आप जब किसी से प्रेम से बात करते हो तो बड़े धीरे धीरे बात करते हो, और जब प्रेम की पराकाष्ठा चरम पे आ जाता है तो शब्द नहीं निकलते, सिर्फ आंखों से बात होती है। सही है कि नहीं? सच ये है प्रेम का प्रतीक। यही रहस्य किसमें था? भगवान राम में। बहुत आत्मसंयमी है ना, आत्मनियंत्रण और अपनी जीवा पर पूरा कंट्रोल कर देते, क्योंकि जीवा का दो ही काम है, बोलना और स्वाद लेना, चखना। तो ये सारे गुण भगवान श्री राम को दिखाई दे रहे थे। और दूसरा एक बहुत सुंदर गुण का वर्णन किया है, जो इसका हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, शब्दों में व्यवहार। वाल्मीकि जी कहते हैं कि शब्दों तथा व्यवहार में विनम्रता होती है। भगवान राम जब भी बोलते थे बड़े विनम्रता से असुंदर शब्दों का चयन करके बोलते थे, ऐसे ही बोलना चाहिए, तभी एक दूसरे से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है, तकरार रुक जाता है। शब्दों से ही लोग फूलों का हार पहनते हैं और शब्दों से ही जूते का हार पहनते हैं। तो गाली गलौज करने से, तोता करने से अच्छा है कि बिल्कुल बड़े मधुरता के साथ राम की तरह बोले। तो ये सब ऐसे गुण भगवान स्वयं एक गुण दिखाए, क्योंकि भगवान एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए अपनों के बीच, एक किसे सीखना चाहिए? भगवान राम से। जितनी भी लीलाएं भगवान ने इस पृथ्वी पर आके की हैं, जानते किसके? हम सबको सुधारने के लिए। इन कथाओं से हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इसलिए भगवान आकर के इस पृथ्वी पर टाइम टू टाइम, समय समय पर, युग युग में आकर के भगवान हमें शिक्षा देते हैं। जब भगवान राम की कोई आलोचना करता था तो भगवान उसका प्रत्युत्तर नहीं करते थे, कोई आलोचना करता था तो चुपचाप भगवान क्या करते थे? सहन कर लेते थे। सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। आज हमारे अंदर सहनशीलता क्या हो गई है? कम हो गई है। हम तो छोटी छोटी बात पे लड़ने मरने के तैयार हो जाते हैं, मार भी देते हैं छोटी छोटी बात पे। इतना लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है कि थोड़ी सी गाड़ी टच हुई नहीं कि देन एंड देयर मारपीट शुरू हो जाती, ट्रैफिक जाम हो जाता है। सच है कि नहीं? सच। अपने ही घर में आप लोग, छोटा सा परिवार रहता है, छोटी छोटी बात पे लड़ता झगड़ता रहता है, ये सच है कि नहीं? सच। यही सच। अरे पहले एक जमाना था, परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था, एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाते थे। अब 10 आदमी कमा रहे हैं, अब पर पेट नहीं भर रहा है, राइट? जितने परिवार में हैं सब बाहर जा रहे हैं, घर में कोई रहने के लिए है ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। अब फिर भी इकट्ठे होकर के न खा पीते न रह पाते हैं, अर्थात अशांत रहते हैं। ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हमें सहनशील होना चाहिए, है ना? सुख दुख, लाभ हानि, सब में संभव होना चाहिए, सहनशीलता ये भगवान से हमें सीखना चाहिए, और क्षमाशीलता, भगवान क्षमाशील है। ये सारे गुण भगवान राम अपने अयोध्या में सबको बता रहे हैं। भगवान हमेशा धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार चलते थे, तो इस तरह से भगवान अपने प्रभाव से, आचरण से, व्यवहार से, बोली भाषा से पूरे अयोध्या वासियों के क्या बन गए, प्रिय बन गए। अगर आप भी किसी के प्रिय बनना चाहते हो तो अपने व्यवहार में विनम्रता और मधुरता लाइए, उसी तरह से सरल बनिए जैसे जल होता है। जल की खासियत क्या होती है कि जैसा पात्र होता है वैसे वो क्या जाता है, ढल जाता है, राइट। कि अगर थोड़ा सा भी कहीं छेद हो जाता है तो वहां प्रवेश कर जाता है, अर्थात जल इतना तरल और सरल होता है कि हर जगह वो अपना स्थान बना लेता है। यह विनम्रता का प्रतीक है ना, इसलिए भगवान राम सब के हृदय को पराजित कर देते थे। जो भगवान राम को देखता था, भगवान के किसी से बात करते थे तो हृदय से पराजित हो जाते थे, भगवान उसके हो जाते थे। ये विनम्रता, ये क्षमाशीलता, ये शब्दों का चयन, मधुरता, वाक्पटु, बात करने का तरीका, ये भगवान ने खुद करके दिखाया। आप देखें कि लीला में किस तरह से भगवान अपने आचरण से व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से जब प्रजा पूरा आनंद उठा रही थी, अयोध्या में सब आनंद हो रहा था, तो एक दिन महाराज दशरथ, अब उनकी उम्र कितनी हो गई, 60,000 साल, 60,000 साल तक महाराज दशरथ जीवित रहे, सोचने वाली बात। और एक दिन क्या हुआ, को दर्पण होता है ना मिरर, तो दर्पण वो देख रहे थे, तो दर्पण देखते समय उनकी नजर अपने कान के बालों की ओर गई, है ना, तो देखा कि उनके कान के जो बाल हो गए अब पकने लगे हैं। तो बताया गया है कि जब कान के बाल पकने लगे तो समझ लीजिए कि अब वृद्धावस्था अपने अंतिम उसमें पड़ाव पे आ गया है, है ना। ऐसे कान के बाल सब के नहीं होते, बहुत रेयर लोगों के होते हैं, उसमें से हम मेरे भी ये देखिए, कान के पास सब के होते, कुछ खास लोगों के पास होते। तो महाराज दशरथ अपने जब कान के बाल देखे, देखे कि मेरे कान पकने लगे हैं, अब सफेद हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब चौथापन आ गया है, वृद्धावस्था अब आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने राम को राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, 8 मंत्री थे जिसमें सुमंत्र जी उनके बहुत क्लोजर थे, खास मंत्री थे सुमंत्र, और गुरु वशिष्ठ जी, है ना, सबको बुला करके कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि राम को जो है राज अभिषेक कल ही कर दिया जाए, कल के लिए, कि अभी दिन में बात हो रही थी, बस एक रात आएगी, रात के बाद जो सुबह, तो उन्होंने कहा कि पुष्या नक्षत्र जो है, है ना, पुष्या नक्षत्र लगने वाला है, उसमें पूर्ण चंद्रमा का प्रवेश है, और ये सबसे उत्तम नक्षत्र माना जाता है, भगवान राम का अभिषेक कर दिया जाए, है ना। और महाराजा दशरथ जो भी कहते थे, है ना, उनके मंत्री तुरंत स्वीकार कर लेते थे। तो वशिष्ठ जी और सुमंत्र जी कहे कि जो आज्ञा, जैसा राजा आप चाहते हैं वैसे होगा। तो उन्होंने आदेश दिया, सारी सामग्री इकट्ठी करके राज अभिषेक करने के लिए, दूध, दही, घी, शहद, गुलाब जल, गंगा जल, फल फूल, बहुत सारी चीज़ें, और पूरे अयोध्या को आदेश दिया गया, पूरे अयोध्या को नगर नगर क्या क्या सजावट किया जाए, हर जगह तोरण पताकाएं लगाई जाए, और खूब उसका सफाई की जाए। और अयोध्या में जैसे कि बताया, हमने बताया था कि अप्सराएं आकर के पुष्प वर्षा करती थी रोड पे, यानी और गुलाब जल से छिड़काव होता था डेली राजमार्ग पे। आजकल तो पीने के लिए पानी नहीं मिलता, पीने के पानी की दिक्कत है, वहाँ छिड़कने का कहाँ आएगा। लेकिन भगवान राम के दरबार में ऐसा नहीं था अयोध्या में। तो इस तरह से पूरी तैयारी वहाँ पे होने लगी। एक खुशी की लहर पूरे अयोध्या में फैल गई कि महाराजा को उनका अभिषेक किया जाएगा, राज्य अभिषेक की तैयारी। जैसे ही एक खबर कौशल्या को मिली, बड़ी खुश, भाई अब उनका बेटा राजा बनने वाला है तो खुशी तो होगी ही, है ना, खुशी है। सुमित्रा भी खुश है ना, सब पर लहर फैल गई है। जब सब तैयारी हो रही थी, सफाई होने लगी, उसी समय जो देवता लोग थे ना, वो परेशान हो गए। जब अयोध्या में राज्य अभिषेक की तैयारी होने लगी तो देवताओं से रहा नहीं गया। देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो जिस उद्देश्य से भगवान आए हुए हैं वो उद्देश्य तो पूरा ही ना होगा। तो इसलिए कुछ ऐसे ही बात बनाई किया जाए कि राम का राज्य हो ना, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सारे देवता मिल करके सरस्वती को राजी किया, है ना। सरस्वती, सरस्वती से प्रार्थना की कि आप जा करके कुछ चमत्कार करिए, है ना, और नहीं तो फिर रावण नहीं मारा जाएगा, सारा स्थिति जो है खराब हो जाएगी। जिसके लिए तो हम लोग प्रार्थना करके भगवान को बुलाए, है ना, अब तो राजा बन जाएंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। तब सरस्वती जी, वैसे सरस्वती जी एक काम करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि भगवान का राज्य अभिषेक में उनकी वजह से बाधा पड़े, वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन देवताओं ने इतना प्रेशर डाल दिया, है ना, कि उनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाए सरस्वती जी। सरस्वती जी आ करके जो एक दासी थी किसकी, कैकेयी की, जिसका नाम क्या था, मंथरा। मंथरा को सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि क्या कर दी, फेर दी। मंथरा के बारे में बताया गया है कि ये जो मंथरा है ये महाराजा बलि की बहन थी। बलि महाराज की तो कथा मानूंगा, बलि महाराज जब भगवान वामन देव के रूप में आए, है ना, तब बलि महाराज का सारा राज क्या कर लिया, छीन लिया। ते मंथरा, मंथरा जो थी उस लीला में बलि महाराज की बहन थी, उसको अच्छा नहीं लगा था कि मेरे भाई का राज्य ये आके छीन गए विष्णु भगवान, है ना, तो इसका बदला मैं लूंगी। तो ही मंथरा जो है कहे कि हम, आपने हमारे भाई का राज छीना था, है ना, हम आपको कैसे राजा बनने देंगे, है ना। ये वही मंथरा थे, अब मंथरा के रूप में आए। तो मंथरा की बुद्धि भर गई, तो वो मंथरा जब कैकेयी, वास्तव में जो कैकेयी थी ना बहुत ही सुंदर थी। एक बार महाराज दशरथ आखेट करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कैकेयी जो कैकेयी की जो पिताजी थे महाराज कैकेयी, उनके राज में, तो वहीं पे उन्होंने कैकेयी को देखा, तो कैकेयी की सुंदरता से इतने प्रभावित हो गए, इतने आकर्षित हो गए कि अपना दिल दे दिया किसको, कैकेयी को, और जा करके उनके पिता जिसका कैकेयी महाराजा कैकेयी से कि मैं आपकी सुंदर कन्या से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो महाराज दशरथ से वो मना नहीं कर पाए कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पे हम शादी करेंगे अपनी बेटी के, कि हमारी बेटी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। ये ध्यान रखना है, इसे इस कंडीशन में शादी हुई थी कैकेयी कि कैकेयी से जो पुत्र होगा वही अयोध्या का क्या बनेगा, राजा बनेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो महाराज दशरथ ने ये शर्त मंजूर कर ली थी, क्योंकि उनको कैकेयी को पाना था, है ना। तो 353 रानियों में से 3 रानियां प्रमुख थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन कैकेयी सबसे सुंदर और वीरांगना थी। उनके पिताजी ने घुड़सवारी और रथ हाँकने की कला, है ना, और शस्त्र चलाने की कला किसको सिखाया था, कैकेयी को। तो इन सारी कलाओं तो सर्वगुण संपन्न थी। एक छत्री की कन्या कैसे होना चाहिए, सुंदरता के साथ साथ उनके ये भी गुण था। इसीलिए महाराज दशरथ बाकी रानियों को छोड़ करके सबसे ज़्यादा अगर समय देते थे, प्यार देते थे, किसको देते थे, कैकेयी को। उनको बहुत मानते थे, हमेशा कैकेयी के साथ रहते थे। तो इस तरह से जब ये सब दृश्य चल रहा था सफाई का, कैकेयी को कुछ पता नहीं, वो अपने पैलेस में महल में आराम फरमा रहे थे, लेटी हुई थी। और जो मंथरा है वो महल की जो अटारी होती है ऊपर छज्जा पे चढ़ करके ऐसे देख रही है कि क्या हो रहा है, पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, इतनी तैयारी, कोई त्योहार तो नहीं है इस समय, तो ऐसा कौन सा खुशी का दिन आ गया पूरा। तो तुरंत वहाँ से जो है ऊपर से नीचे उतर करके गई, है ना, कि तो जो लोग सफाई करते सजावट में लगे थे उनसे पूछने लगे कि भैया क्या हो रहा है, इतना सब क्या हो रहा है। तो कहे तुम्हें नहीं मालूम, कि ना मुझे तो कुछ नहीं मालूम। कहे कि कल सुबह भगवान राम को राजा बनाया जाएगा, उनका राज अभिषेक किया जाएगा, है ना। जैसे ही ये बात मंथरा को पता चला वो दौड़ करके किसके पास आई, कैकेयी के पास। कैकेयी आराम से लेटी हुई थी, तो जानते क्या बोलते हैं, अरे उठो उठो नासमझ, उठो बहुत सो लिया है ना, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या होने जा रहा है, है ना। अब वो उठाया जबरदस्ती, क्योंकि इतना बड़ा उपद्रव तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाएगा, तुम तो अपना सारा जीवन सोने ही बिता दोगी, है ना। कल क्या होगा, कौशल्या का बेटा जो है राजा बन जाएगा, है ना, अब तुम जो है उसकी नौकरानी बन जाओगे, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी कौशल्या की, जिसका बेटा राजा बनेगा, है ना। तो जैसे ही ऐसा बोला तो कैकेयी ने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जो कैकेयी थी वो भगवान राम से बहुत प्रभावित थे। भगवान राम अपने व्यवहार से कैकेयी को भी प्रभावित किए थे, वो अपने पुत्र के समान भगवान राम को भी आदर थे। तो कहे कि ये तो खुशी की बात है, अगर राम को राजा बनाया जा रहा है तो खुश होना चाहिए, ये तो तुम्हारे घी में मुँह में घी शक्कर ऐसा बोला कि मैं तो तुम्हें खूब हार देती हूँ, खूब, तो बड़ी खुशी की बात है, है ना। अब मंथरा चूंकि सरस्वती का प्रेशर था, है ना, मंथरा कहे कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने को सोचा कि कल जब कौशल्या का बेटा राजा बन जाएगा, है ना, तो तुम तो नौकरानी बन जाओगी, अब फिर मेरा क्या होगा, है ना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, और जब तुम ही नौकरानी जैसे बन जाओगी, है ना, तो मेरी तो और दुर्दशा होगी, है ना। तुम नहीं समझ रहे हो, ये जो राजा है ये दशरथ जी ये बहुत चालाकी के साथ तुम्हारे साथ छल कपट किया है। तो कहे कैसे? कहे कि तुम्हारे बेटे भरत को ननिहाल भेज दिया है इसीलिए, और उनको बुलाया भी नहीं, पता नहीं है, उनको कुछ पता भी नहीं है ना, और ये सब उसकी साजिश है, उसने इसीलिए उनको भेज दिया ताकि जो है इनको राम को राजा बना दिया जाए, है ना। ये तुम्हारे साथ छल कपट है, तो उसके दिमाग में तो बात तो ये कुछ सही कर रही है, बात तो कुछ सही इसकी बात लग रही है। अब धीरे धीरे कई कई की जो मती हो क्या हो रही है, फिर रही उसके बकाय में उकरने। उसने कहा कि देखिए कैकेयी, महाराजा दशरथ तुम सोचती हो कि तुम तो इसलिए मस्त हो, तुम बड़ा प्यार करते हैं, अगर तुमसे प्यार करते तो तुम्हारे बेटे को राजा बनाते, प्यार तुमसे करते हैं और राजा कौशल्या के बेटे बना रहे हैं, इस चाल को तुम समझो इस बात को। कही तो बात तो सही करी मंथरा, कही मंथरा तुम पहली बार मुझे अच्छी राय दी हो। अब पूरी तरह से मंथरा के बहकावे में कई कई आ गई। कही तुम्हारा कुंवर कितना सुंदर है देख, अब उसका वर्णन कर रहे हैं। को मंथरा का जब उससे प्रभावित हो गई है ना, तो कई कहे कि तुम्हारा कुंवर कितना सुंदर है, ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बनाया हुआ है, जितना ज्ञान है इस कुंवर में भर दिया है, अब तुम्हारे इस कुंवर में क्या करोगे, जब मेरा बेटा राजा बन जाएगा, भरत राजा बन जाएगा, तब चंदन का लेप करूंगी और इसको चारों तरफ से कुंवर पर माला पहनाऊंगी, है ना, और जितनी कुंवरियां हैं अयोध्या की सब तुम्हारी दासी बनेंगी, और तुम कुंवरियों की क्या बन जाओगी, रानी बन जाओगी। अब तो उसकी बांचे खिल गई, क्योंकि वही वो चाहती थी। ठीक है कई, मैं इसीलिए तुमसे बोल रही थी, मुझसे देखा नहीं गया है ना, कि मैं तो तुम्हारे पिताजी ने, मैं तो तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि तुम्हारी हमारी रोजी रोटी तुम्हारे गुजर से, मैं कौशल्या गुजर थोड़ी आई, हमारी रोजी रोटी तो तुम्हारे हाथ पे है, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं तो खुश रहूंगी, है ना। अब दोनों कर, तब कहा कि अब बताओ करना क्या चाहिए। तब मंथरा ने याद दिलाया, वास्तव में एक संबर नाम का राक्षस था, दैत्य, उससे और इनसे बहुत भयानक युद्ध हुआ देवताओं से, है ना। तो कभी कभी महाराज दशरथ अतिरथी थे, अतिरथी का मतलब है जो हजारों महारथियों के साथ एक अकेले लड़ने की क्षमता रखता हो उसे अतिरथी कहते हैं। तो महाराज दशरथ इतने बड़े योद्धा थे कि कभी कभी देवता लोग उनको युद्ध करने के लिए अपने पक्ष से बुलाते थे। तो संबर दैत्य के युद्ध में जब महाराज दशरथ अमरावती इंद्रलोक जाने लगे, कभी वहीं पर युद्ध चल रहा था, है ना, तो जो कैकेयी थी वो भी उनके साथ गई, है ना। इतना भयानक युद्ध हुआ कि उस युद्ध में महाराजा दशरथ का जो सारथी, जो रथ हांकने वाला था, है ना, वो मारा गया, और बहुत ही बेचैन हो गए, है ना, माने महाराज दशरथ काफी बेचैन हो गए, क्योंकि उनका जो रथ जो है घोड़ा वो भी मारा गया, और ये सारथी जब मारा गया तब जो कैकेयी थी वहां पे क्या किया, क्योंकि उनको रथ हाँकना आता था, और तुरंत घोड़े का जो लगाम होता है ना, घोड़ों का जो लगाम होता है, उन्होंने क्या किया, अपने मुंह में पकड़ लिया और दोनों हाथ से में तलवार ले करके अयुद्ध करते हुए वहां से राजा को वापस लेके आ गए। रात भर विश्राम करने के बाद आयुर्वेद का दवा लेने के बाद फिर दूसरे दिन फिर चढ़ाई हुई। जब दूसरी युद्ध हुआ तो उसमें कई कई उनके साथ ही थे। मंथरा यही कहानी क्या कर रही, याद दिला रहे, ये मंथरा बता रहे कि जब तुम ऐसा किया था, क्योंकि जब वहां से एक बात हुई थी तो मंथरा को कई ने मंथरा को बताया था बात, तो वही कथा वो सुना रहे। तो बोल रहे कि जब तुमने क्या किया था, तो कैकेयी ने क्या किया था कि जैसे ही देखा ये जब भयानक युद्ध चल रहा था तो महाराज दशरथ युद्ध करने में लगे हुए थे, उसी समय क्या हुआ, उनके जो रथ का पहिया था वो एक धुरी होती है जिसे पहिया टिका रहता है, तो कैकेयी की नजर गई कि वो जो धुरी है टूट गई है और पहिया कभी भी निकल सकता है ना। तो कैकेयी ने क्या किया, अपनी उंगली, अपने हाथ की उंगली जो है उसमें डाल करके और तब तक डाल रखा जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो गया, पूरा उनका हाथ काला पड़ गया था। जब महाराज को पता चला तो महाराज हृदय हार गए, कहा कि हे रानी, हे कहके दो बार मेरी रक्षा की हो तो दो वरदान मुझसे, जो वरदान तुम्हें मांगना हो मांग लीजिए। उसमें कैके ने मुस्कुरा करके कह दिया कि मुझे आपका प्यार मिल रहा है, इससे बड़ा हमें और क्या हो सकता है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और जब जरूरत पड़े तो मैं मांग लूँगी। तो मंथरा बोल रही है कि रानी यही जरूरत है, उनको याद दिलाओ कि जो दो वरदान मांगने के लिए दिया था अब समय क्या है क्या? आ गया है और दो वरदान मांग लो। तो कहें क्या मांगे, तो कहे कि वरदान, हम दो वरदान मांगेंगे। कहे कि पहली बात, जितना तुम श्रृंगार उंगार पहनी हो सब है ना, आभूषण सब उतार के फेंक दो, और सबसे जो रद्दी फटी वाली साड़ी है वो साड़ी पहन करके कोप भवन में जा करके जमीन पर लेट जाओ। पहले के राजा महाराजा कोप भवन बनवाते थे कि रानी को अगर किसी चीज का गुस्सा हो तो कोप भवन में चली जाए, है ना। आजकल तो रहने के लिए कमरा नहीं होता एक ही दो कमरे होते हैं, वही कोप भवन भी होता है, वही सारा होता है अलग से कहां से आदमी कोप भवन बनवाएगा, है कि नहीं। अगर किसी को रूठना होगा तो अलग से कहां से कमरा पाएगा बेचारा, जहां है वही रूठ जाता है। तो मंथरा ने बोला कि जो कोप भवन है, कितना बड़ा कोप भवन बनाया हुआ है, तो उसका उपयोग करने का अच्छा अवसर आ गया है ना भाई। कोप भवन इसीलिए बनाया गया है, उसका नाम ही कोप भवन है ना, इसलिए तो अपना ही महल छोड़ करके कहां चली जाओ, कोप भवन जाओ है ना, वहां पे जाकर अपना सब बार और सब फैला करके पूरा जमीन पर लेट जाना है ना। देखना, बता रही है कि देखना जो राजा है ना बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, उनकी मीठी बात को मत आना है ना। और दूसरा, पूरी दुनिया की जो है दौलत देने को तैयार हो जाएंगे है ना, कि ये ले ले बोल रहे कहीं ना, बस हमको एक ही चीज है कि जो ये राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही है राम के लिए, राम की जगह राज अभिषेक किसका होना चाहिए, मेरे बेटे भरत का होना चाहिए। तो पहला वरदान तुम ये मांगो कि हमारे भरत को जो है अयोध्या का राजा बनाया जाए। कहे खुश हो गए, कहे दूसरा, कहे 14 साल का वनवास मांग लो, कहे कि तत्काल जो है राम जो है तुरंत साधु का वेश पहन करके, अमृत छाला पहन करके, राशि वस्त्र छोड़ करके और 14 साल तक के लिए कहाँ चले जाएं, वन में चले जाएं। और तुम्हारा बेटा भरत कम सुंदर थोड़ी है, तब तक वो सारे अयोध्या वासियों का दिल जीत ले जाएगा, है ना, है ना। और 14 साल तक में वो जब वन वन भटकते रहेंगे, और तब तक तुम्हारा 14 साल में पूरा वातावरण अपने फेवर में कर रहा है और हमेशा राजा बना रहे। ये मंथरा की जो राय सलाह थी कई कई के दिमाग में बैठ गए। इधर राजा कुछ पता नहीं, वो अपने तैयारी में लगे हुए हैं, है ना, सब तैयारी में है ना, पूरा सजाया जा रहा है। इधर जो मंथरा और कई कई ने पूरा प्लान बना लिया है ना, और कहना कि उसने भी बोला कि वो कितना भी बोलेंगे जल्दी बोलना मत, जैसे औरतें जब रूठ जाती जल्दी बात नहीं करती है ना, है ना। तो मंथरा ने शिक्षा दी कि वो कितना भी बोले पहले बोलना मत, है ना, जब थक जाए तब बोलना, तब ये बात करना, कल पूरा किसी भी तरह से उनके बहकाने में नहीं आना, ये सब लिखा हुआ है ना। तो वो जो है तुरंत कैकेयी गोप भवन में गई, सारे गहने आभूषण हार और सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया, भाई किसी चीज का नया हार बन जाएगा खुश हो जाएंगे तो, है ना। अब उसको तोड़ ताड़ सब ऐसे बिखरा दिया, पूरा बाल के जितने जो गुत्थर सब करके बड़े बड़े बाल बिखरा करके एक दूसरी साड़ी पहन करके और जाकर जो गोप भवन में पलंग रखी रहती थी, ऐसा नहीं कि पलंग नहीं था, वो पलंग में न करके पलंग के नीचे जो है बिखरकर लेट गई, है ना। और जैसे ही एक खुशखबरी देने के लिए, है ना, कि महाराजा दशरथ जो है आते हैं, और सुनो इस समय बहुत कम होता है, बहुत कहानी बहुत बहुत दिल में, तो इस तरह से हम बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। अब जो गए महाराज दशरथ, है ना, तो सीधा पहले महल में गए, है ना, और वहाँ पे आवाज लगाई कई कई की, है ना, तो देखा तो महल में कई कई थी नहीं, है ना, तो इधर और देखा तो महल में थी नहीं। तो जो वहाँ पे दासियाँ रहती थी, एक दासी बोला कि पूछा कहा कि के कहाँ है, तो एक दासी बोला कि हे राजन मैं तो उसको कोप भवन की ओर जाते हुए देखा, अब कोप भवन का नाम सुनते ही उनको उनका माता ठनका, क्योंकि बहुत दिन के बाद कोप भवन का नाम आया है, अब कोप भवन के मतलब जाने का मतलब कि जरूर कुछ अशुभ होने वाला है, है ना। वो दौड़ करके कोप भवन की ओर गए, है ना, और वहाँ जब देखा तो पूरा दृश्य जैसा मंथरा ने बताया था सारा दृश्य वहाँ वैसे दिखाई दे रहा था, सब बिखरा हुआ। तो देखा पहले तो पलंग पे देखा तो वहाँ तो थी नहीं, तो जब नीचे देखा तो वहाँ पे देखा तो उधर मुँह करके लेटे हुए, तो जिधर मुँह करवट में था भगवान महाराज दशरथ गए उसके मुंह की ओर अपने घुटने कर पल के, तो जब वहाँ बैठे थे दशरथ तो पलट कर उधर मुंह कर लिया ऐसा होता है, जब उधर गए तब उधर मुंह कर लिया, तो काफी समय तो सिर्फ मुंह इधर उधर होता है, करवट ही बदलते रहते, है ना। तब भगवान महाराज दशरथ ने क्या किया कि उनका सिर पकड़ करके अपने जंघे पर रख लिया, है ना, उनके सिर को, और फिर पुचकारते हुए अपने हाथ से उनके चेहरे पुचकारते हैं कि रानी तुम्हें क्या हो गया है, किस चीज की कमी है, है ना, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, है ना, और तुम इस तरह से आओ चुप, कोई उसने बताया था मंत्रा ने कि बोलना जल्दी तो बोलना ही मत, है ना, अब बोल ही ले, है ना, अब बेचारे दशरथ मनाते मनाते थक रहे हैं, है ना, तो कुछ तो बोलो, पूरे संसार की दौलत मैं दे दूँ, क्योंकि मैं तो चक्रवर्ती राजा हूँ, हम सबको दे, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, तुम अस्पृतः अपनी इच्छा से व्यक्त करो, है ना, जो तुम चाहोगी मैं दूंगा, है ना, लेकिन वो बोल नहीं रहे, है ना। अब जानते हैं बताया गया है शास्त्र में कि महाराज दशरथ ने उसको समझाने के लिए सारी ओर लगा ली, लेकिन वो तब जाकर के जब उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूँ, है ना, राम की सौगंध खा करके मैं वचन देता हूँ कि जो तुम मांगोगे हम देंगे, तब उसने कहा कि 12 आदित्य 11 रुद्र 8 वसु ये 2 असली साक्षी थे, सूर्यचंद सब के बीच आपने वचन दिया है, तो इसलिए 2 वरदान देने का जो वचन आपने दिया था याद दिलाया कि ये समय है, कहीं वचन मांगो। उसने कहा कि हे राजा, कि जितनी भी तैयारी हो रही राज्याभिषेक की, कल सुबह उठते ही सब से पहले हमारे भरत को राजा बना जाए। ये जितनी तैयारी हो रही है राम के लिए, राम की जगह कौन हो जाए, मेरा बेटा भरत, उसका आप राजा बनाते। ये पहला वरदान आपको देना है। यो मस्त राजा दशरथ जी तैयार हो गए, इसलिए तैयार हो गए कि वास्तव में राजा दशरथ को भरत को ही राजा बनाना चाहिए था, क्योंकि कैकेयी के पिता से वचन दे के शादी किए थे, राइट। लेकिन भगवान राम के व्यवहार से बड़प्पन से इतने प्रभावित हो गए है ना, कि भरत शत्रुघ्न को बुलाया तक नहीं और राज सबसे की तैयारी कर रहे थे। इनसे उनको डर नहीं, उनको कुछ नहीं कि भाई हमारा भरत भी मेरा ही बेटा है, और देखा जाए तो मैंने वचन दिया था कैकेयी के पिता को, तो इसमें उनको आपत्ति नहीं है। लेकिन कहे दूसरा वरदान क्या होगा है ना, जब दूसरा वरदान मांगा कि मैं चाहती हूं कि राम तत्काल इसी वक्त जो है सब राशि वस्त्र उतार करके एक साधु का वेश पहन करके मृगछाला लगा करके और वन में 14 साल के चले जाएं, 14 वर्ष के लिए। जब ये बात सुने तब उनके होश उड़ गए, उनका लग रहा कि उनको इतना झटका लगा कि मैं क्या सुन रहा हूं, तो 14 साल ही क्यों मांगा, ये भी एक प्रश्न होता है, 14 ही साल क्यों मांगा। इसलिए कि ये सब घटना किसकी रात की थी है ना, कि सब तैयारी हो रही थी और सिर्फ 14 घड़ी है ना समय बचा था सुबह होने में है ना, और 14 घड़ी के बाद राज अभिषेक होना था। तो कहा कि ये जो 14 घड़ी का समय है इसको हम 14 वर्ष के लिए बना देते हैं, ये कभी घड़ी आएगी नहीं राम के राजा के लिए है ना, तो 14 वर्ष में उसको बना दिया। और दूसरा शास्त्र में बताया गया है कि 14 वर्ष इसलिए किया गया, एक तो इसका एक कारण था, और दूसरा जो रावण था है ना उसको मृत्यु का सभी कितने समय बाकी था, 14 वर्ष, अर्थात 14 वर्ष के अंदर रावण को मरना ही था। अब भगवान राम आए रावण को मारने के लिए, राजसों का वध करने के लिए, आप समझे ना, इसलिए ते पूरा कैलकुलेटेड था है ना। इसी के पीछे ये सारे देवता सरस्वती जी सब लोग लग करके मंत्रा और कैकेयी के माध्यम से ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि भगवान राम को बन जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। और 14 वर्ष के लिए तो ये जब बात हुई तब महाराज दशरथ ने कहा कि पापी स्त्री, अब जितना गाली देना होता था देना शुरू किए, क्योंकि वो राम के बिना रह ही नहीं सकते थे, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती है ना, उसी तरह से महाराज दशरथ जो है राम के बिना नहीं रह सकते। उसने कहा मार्गदर्शन के कि पापी स्त्री तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतनी कुटिल कैसे हो सकती हो, क्योंकि राम तो कौशल्या से ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं है ना, तुम्हें सम्मान देते हैं, भगवान राम तो सबके चाहते थे वो सबको सम्मान देते थे। तुम्हारे दर्शन बात करें इस तरह से कि मेरा कुछ भी हो जाए मैं किसी भी हालत में राम का परित्याग नहीं कर सकता, महाराज दशरथ कर रहे हैं। लेकिन वो टस से मस है, इतनी कठोर बन गई थी है ना कि उतना वो बेचारे तड़प रहे हैं बिलख रहे हैं, लेकिन कैकेयी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। फिर महाराज दशरथ जब होश आया, क्योंकि रोते रोते बेहोश हो जाते थे, और जब चेतना आती थी फिर गाली देने, उनका कि हे कैकेयी इसकी वजह कोई दूसरा वरदान मांग लो, पहला वरदान तो भरत को हम राजा बना देंगे, लेकिन जो 14 साल को राम को वनवास है इसकी जगह तुम कोई और वरदान मांग लो, मैं दूसरा वरदान दे देती हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकते। लेकिन कई तस्य मस नहीं हुए, तब क्या करते हैं? उन्होंने कहा अब थोड़ा दशरथ जी जो है ना स्त्रियों के बारे में कुछ बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्त्रियां कितनी अपराधनी होती हैं, बड़े निष्ठुर होती हैं, हठी होती हैं, स्वभाव से स्वार्थी होती हैं। अब को के लिए कर रहे के लिए उसे सारी स्त्री को लपेट रहे हैं कि तुम अपने स्वार्थ के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। यहां से बताना कि हे भरत की माता, सभी स्त्रियां भले न हो लेकिन तुम अवश्य ही ऐसी हो, बता दे, साफ कर दे, तुम बड़ी कुटिल वाले, सारी स्त्रियां ऐसी ना, लेकिन हे भरत की माता तुम ऐसी हो, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया? ऐसा कह करके रोते रोते उनके पूरे नयन लाल हो गए। इधर ये सब सीन चल ही रहा था है ना, कि तभी वशिष्ठ जी, क्योंकि सारी तैयारी हो गई थी राज्यभिषेक की है ना, सारी तैयारी हो गई थी राज्यभिषेक की, वो दौड़ करके राजा के महल की ओर गए, तो वहां पे तो महल में थे नहीं, तो वही बताया कि वो तो कोप भवन में, अब कोप भवन का नाम सुन करके तो वो भी घबरा गए है ना, कहा एक उत्सव का माहौल है कोप भवन, तो जब वहां गए तो सुमंत्र जी को बुलाया गया, क्योंकि सबसे क्लोजर सुमंत्र जी थे, तब वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर देखिए राजा कहाँ है, तब सुमंत्र जी जब अंदर गए तो वो खुद अवाक रह गए इस दृश्य देख करके है ना, और तो खुशखबरी लेके गए थे कि सारी तैयारी हो गई है, अब राजा को जो है अलग किया जाए। उसी समय सुमंत्र जी जब उनसे बोला है ना, तो दौड़ करके कहे कि जा करके जो एक कैकेयी थी ना, उसने खुद बोला कि अब राजा दशरथ तो बोलने के लायक रहने के है ना, उसने कहा कि आप राम को बुला के लाओ है ना, तब भगवान राम के पास जब समझ गए कि अभी आपको माता कैकेयी और महाराज दशरथ बुला रहे हैं, अब भगवान राम इसलिए खुश थे कि राज सबसे इसी के लिए बुला रहे होंगे, लेकिन जब वहां का जब दृश्य देखा है ना, तो कही क्या हुआ माता क्या हुआ, तो कही कि देखे तुम्हारे पिताजी जो है ना रात भर सोए नहीं है, बेचैन है, बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, बस इन्हें कुछ वचन देने की बात कहे, तो कही माता बताई क्या वचन दिया, तब कहीं बोला कि हम चाहते हैं कि राजा भरत को राजा बना जाए, भगवान राम सहज तैयार हो गए, ये तो बहुत बड़ी, ये तो आपको हमको बोलना चाहिए था, हमें आप ये तो मान जाते है ना, हमारे पिताजी कर देने क्या जरूरत थी, कहे दूसरा कि आपको जो है वन में जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, और राशि भेष में नहीं, साधु के ड्रेस में है ना, एकदम सन्यासी के ड्रेस में आपको 14 साल के लिए वनवास, वो तैयार हो गए, भगवान राम तैयार हो गए, क्योंकि माता करी पहले बोल दिया होता तो, लेकिन बहुत अच्छा, अब भगवान राम जो है गए कौशल्या के पास, कौशल्या बड़ी प्रसन्न थी, तो बाकी भगवान राम उनसे कहे कि माता मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ आप दुखी मत होना, क्योंकि मुझे इसी वक्त जो है वन को जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने वचन दे दिया है माता कैकेयी को 14 वर्ष के लिए मेरे लिए वनवास, और भरत को राजा बना दिया जाए, तो कौशल्या का तो हालत खराब हो गई है ना, कहाँ उनको क्या कल्पना की थी, आप खुद सोच सकते हैं इस बात को है ना, ऐसा दृश्य हुआ। ये बात लक्ष्मण जी सुन रहे थे, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन लक्ष्मण जी तो इतना गुस्सा हो गए कैकेयी के ऊपर कि ये जो बूढ़ा है पिता दशरथ, ये सठिया गया है ना, इसका दिमाग बूढ़ा हो गया है ना, ये जो है एक नारी के चक्कर में आकर के अब ये सत्यानाश कर रहा है, हम तो इसको मार देने, माने इतना गुस्सा हो गए थे कि ये तो अन्याय हो रहा है। भगवान राम ने समझाया कि देखो पिता पिता होते हैं और माता माता होती हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर कौशल्या, अब ये बात पूरे अयोध्या में फैल गई है ना कि भगवान राम को वनवास जाना पड़ेगा और भरत को अभिषेक करने के बाद है ना। जैसी लगभग जितना सजावट सिंगार सब चल रहा था, जहाँ चल रहा था सब क्या हो गया, रुक गया, सब हाहाकार मच गया, सब रोने धोने लगे, ये क्या उलट क्या हो गया, और सब कह कह के क्या करने लगे, कोसने लगे, लेकिन वचन मत थे, दशरथ कुछ बोल नहीं सकते थे। इतने भगवान राम क्या करते हैं, भगवान राम तुरंत अपना सारा श्रृंगार उतार करके सब ब्राह्मणों को दान दे करके साधु के वेश में तैयार हो गए है ना। तो वो दौड़ करके सीता जी के पास गए है ना। अब सीता जी का जो दृश्य था वो बिल्कुल असहनीय था कि सीता जी अभी भी शादी करके आई हैं और खुद एक राजा के महल में रही हैं है ना, और एक राजा के महल में आकर दूसरे राजा के महल में आकर के रही हैं, और अचानक उनके पति को जो है वनवास जाना पड़े तो स्त्री के ऊपर क्या गिरेगी, वो सीता जी कैसी हालत हो गई है ना। भगवान राम ने कहा कि देखो सीते, महाराज दशरथ ने मेरे मुझे आदेश दिया है बन जाने के लिए, तो मैं ही जाऊंगा, आपको तो यही रहना चाहिए है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो जो वहाँ इतने जानवर होते हैं है ना, इतने कांटे और कंकर होते हैं, आपके चरण इतने कोमल हैं कि वो चुभेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जंगल में भटके हमारे साथ। सीता जी ने जो जो कहा ये आप लोग सुनना चाहिए। सीता जी ने कहा कि देखिए हे राम, आप मेरे पति भी हैं और पुरुषोत्तम भी हैं, और पत्नी मैं आपकी पत्नी हूं, अब मेरी सारी खुशी आपके चरणों में है, मैं जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, हमारे लिए वही स्वर्ग है जहां आप हैं, तो सुख में भी दुख में भी हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने बहुत पूछे कि पति के भाग की भागीदार बनना प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है, मैं अवश्य जीवन में आपके साथ जाऊंगी। एक पिता माता भ्राता पुत्र वधू सब अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किंतु एक पत्नी को अपने पति का अनुसरण हर परिस्थिति में करना होता है, मैं किसी अन्य के शरण नहीं ग्रहण कर सकती, स्वयं की भी नहीं, मेरे पति ही मेरे एकमात्र शरण हैं, अतः मैंने आपको शरण करने का निश्चय किया है, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। क्योंकि भगवान ने कहा था कि जब आप चलेंगी तो आप कंकड़ होते हैं, कांटे होते हैं, चुभेंगे, ठोकरें लगेंगी, ठेस लगेंगी। सीता जी ने कहा कि आप आगे आगे चलोगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, जहां आपके चरण पड़ेंगे मैं अपना पांव वहीं रखूंगी, कि जो चुभेगा पहले आपको चुभेगा उसके बाद मैं रखूंगी। इस तरह से सीता जी ने कहा, लेकिन भगवान राम नहीं चाहते थे कि किसी तरह सीता जी चलें, लेकिन सीता जी ने इतना जिद कर लिया कि जब तक मैं आपके साथ रहूंगी मैं आपके साथ में ही सुखी रहूंगी, आप सोचें कि आप चले जाएं और मैं सुखी रहूंगी, इससे अच्छा तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। उन्होंने जहर खाने की धमकी भी दे दी कि इससे अच्छा है कि मैं जहर खा करके मर जाऊं, लेकिन मैं आपके साथ न चलूं, ऐसा नहीं हो सकता। तब भगवान राम ने देखा कि सीता जी भी जो है नहीं मानेंगे, कहे ठीक है तैयार हो जाए। उन्होंने अपने सारे आभूषण श्रृंगार उतार करके अपर एक साधारण तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। तब जो है सुमित्रा के पास जाते हैं कौन, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं तो आपके साथ चलूंगी, जाऊंगा ही जाऊंगा। भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ रह करके माता पिता का ध्यान रखना, कि नहीं आपके साथ मैं अवश्य चलूंगा, इसलिए कि जब आप लोग आराम करेंगे तो हम आपके लोगों की क्या करेंगे, पहरेदारी करेंगे, सुरक्षा करेंगे, है ना। तो भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए तुरंत ऐसे बोल दिया कि ठीक है तुम भी तैयार हो जाओ, लेकिन अपनी माता से आज्ञा लेकर के, क्योंकि हमें तो आज्ञा मिल गई है लेकिन तुम दोनों भी आज्ञा लेकर के चलो। तो पूरे अयोध्या की जो स्थिति थी इतनी दयनीय हो गई कि सीता राम और लक्ष्मण अब साधु के वेश में जब होकर के तैयार हो रहे हैं। कथा को थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है वो चलने लगे। तो जब रथ पे सवार होकर के सीता राम और लक्ष्मण रथ पे बढ़कर सुमंत्र जी के साथ प्रस्थान के, सारे अयोध्या वासी रोते हुए उनके साथ खो लिए, है ना। काफी दूर तक गए, है ना। और भगवान राम मनाते रह गए कि आप लोग मत जाइए, आप लोगों को थोड़ी आदेश दिया गया जंगल में जाने के लिए, है ना। लेकिन इतना प्रेम था राम से सीता जी से कि वे लोग सब रोते हुए, कोई मान नहीं रहा था, है ना। तो भगवान ने एक युक्ति सोची कि चलते चलते जब अंधेरा हो गया, थक गए, तो कहे कि यहाँ पे पड़ाओ। सुमंत्र ने कहा कि आप यहाँ पे पड़ाओ। सारे अयोध्यावादी सब सो गए। तब भगवान ने चुपके से सुमंत्र कहा कि चलो हम तीनों रथ से निकल चलते हैं, ये सब सो रहे हैं इनको सोने दीजिए, रथ को ऐसे हाँ कि ऐसा कुछ कला कीजिए कि ताकि भ्रमित हो जाए लोग, पता ना चले रथ किस ओर गया है, है ना। इस तरह से भगवान रात में निकल दिए। बेचारे अयोध्यावासी सोते ही रह गए थे, है ना। जब सुबह हुआ देखा रथ दिखाई नहीं दिया, और सब रोने चिल्लाने लगे कि भगवान राम कहें, देखा तो रथ इस तरह से उन्होंने चक्कर बना दिया था कि पता ही नहीं चला। तो अब बेचारे अब मजबूरी में क्या हो गए, वापस आ गए, है ना। अयोध्या सारा वीरान, आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने वृक्ष थे सारे खिले हुए फूल क्या हो गए थे, भगवान के वियोग में मुरझा गए थे, है ना। इस तरह से जितने हरे भरे पौधे थे, प्रकृति भी रोने लगी थी, सब पतझड़ जैसे स्थिति आ गई थी भगवान राम के वियोग में। अब भगवान क्या करते हैं, आगे पहुंचते हैं तो गंगा नदी मिलती है। अब गंगा जी के पार जाना है, है ना। अब वहां जो केवट है ना, वो अड़ गया, है ना। क्योंकि जब तक आपके चरण हम नहीं धोएंगे तब तक हम आपके नाव में बैठाएंगे नहीं, क्योंकि आपके जो चरण की धूल है उसकी बड़ी महिमा है। मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से एक पत्थर नारी बन गई, है ना। अब मेरी जो नाव है ये तो लकड़ी की है, काठ की है, है ना। जब एक पत्थर नारी बन सकती है तो आपके चरण का स्पर्श करते ही हमारी जो काठ की नाव है वो भी स्त्री बन जाएगी। तो मेरी तो रोजी रोटी भी चली गई, अब फिर इसको हमें खिलाना पिलाना पड़ेगा। एक नारी को खिलाने पिलाने में तो मैं इतनी मजबूरी कर रही, और जब दूसरी नारी तैयार हो जाएगी तो मेरी क्या स्थिति होगी। इसलिए हे प्रभु, जब तक हम आपके चरण नहीं धो लेंगे हम नाव पे बैठाने वाले नहीं। पड़ गया। अब भगवान राम कभी सीता जी को देखे मुस्कुराते हुए, कभी लक्ष्मण की ओर देखे। इसमें भी एक रहस्य है, बड़ा सुंदर रहस्य है। ये जो केवट था ये अगले जन्म में जानते क्या था, ये जो वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे वामदेव था वो। तो एक बार क्या हुआ, एक संधि नाम के मुनि थे, है ना। उनको जो है एक श्राप से महाराज दशरथ ने क्या किया, संधि मुनि को शब्द वेदी बाण से मार दिया था। तो संधि मुनि के मरने से उनके जो पिता थे अंधि मुनि और उनकी पत्नी उनके शोक में मर गए थे, तीन लोग मरे थे। तो महाराज दशरथ ने संधि मुनि को मारा था, उनसे उनके माता पिता भी मर गए, तो तीन लोग मर गए। इसलिए जो थे दशरथ जी बहुत बेचैन हो गए है ना, क्योंकि ये जो उनके ऊपर आक्षेप लगा, एक तरह से जो पापाचार लगा, तो इससे कैसे मुक्ति मिले है ना। इसके लिए वो दौड़ करके वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में गए थे। लेकिन जब आश्रम पहुंचे तो उस समय वशिष्ठ मुनि वहां पे नहीं थे, उनका बेटा था कौन, वामदेव है ना। तो जब अपनी व्यथा बताई राजा दशरथ ने, तब उन्होंने बोला कि ऐसी सी घटना हमारी घट गई, इसके हमको मोक्ष कैसे मिले, इसे कैसे उड़े। तब उन्होंने कहा कि तीन बार राम का नाम ले लो, राम राम और राम। तो तीन बार उन्होंने राम 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 कहा तो उनके सारा पवित्र हो गए, सारा जो पाप लगा था सब कट गया। उसके बाद राजा दशरथ अयोध्या वापस आ गए। तो जब वशिष्ठ जी अपने आश्रम वापस आए तो वामदेव ने सारी कहानी सुना दी। तो वामदेव पर इतना गुस्से हो गए कि तुमने तीन बार राम बोला ही क्यों, अरे एक राम से आदमी भवसागर तर जाता है, तो तुमने दो एक्स्ट्रा राम क्यों बोलवा दिया। इसलिए गुस्सा हो गए कि तीन बार क्यों बोलवाते। जब यहां तो बताया उन्होंने कि एक रा शब्द, सिर्फ रा कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे जब रा बोलते हैं अब फिर आप क्या बोलते हैं, म बोलते हैं, राम। तो जब रा बोलते हैं तो मुंह खुल जाता है राइट, और जब म बोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। आलो बोल के दिखाइए, रा बोले रा फिर बोले म, जब रा बोलते तो मुंह खुलता है और जब म बोलते मुंह बंद हो जाता है। तो वशिष्ठ जी यही बता रहे हैं अपने बेटे वामदेव से कि रा से ही सारे पाप हृदय के क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जब म बोल देते हैं राम म कह देते हैं वो पाप फिर वापस आता नहीं है, और तुमने तीन बार बोलवा दिया। इसलिए तुम्हें चंडाल की योनि में जाना पड़ेगा, तुम्हें नीच बनना पड़ेगा, और जब प्रभु राम के चरणामृत का पान करोगे तब तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा। अपने बेटे को श्राप दे दिया, वही बेटा बाद में क्या बन गया, केवट बना। इसलिए कहा कि जब तक हम पाँव नहीं पखारेंगे, चरणामृत का पान नहीं करेंगे, हम जाने चढ़ाएंगे रहे। और दूसरी कथा आती है कि जब भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनको क्या कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। ये दृश्य हमारे वैदिक एक्सो में दिखाया गया है ना, कि सैया पे शेषनाग की सैया पे भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी क्या कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। क्षीर सागर की घटना है। तो एक कछुआ जो है वो भगवान का जो अंगूठा है लाल रंग का, चरण देख करके बड़ा आकर्षित हो गया, तो पानी से नीचे से आ करके भगवान का चरण छूना चाहता था है ना। तो चरण के पास कौन बैठी थी, लक्ष्मी जी। उसका हटा देगा, हट यहाँ से, चरण पर मेरा अधिकार तो कहाँ से आ गया, वो चरण छूने ले दिया, हटा दिया। फिर वो पीछे से गया तो उधर शेषनाग जी फुफकार करके हटा दिए। वो बेचारा बहुत प्रयास किया भगवान को स्पर्श करने का है ना, लेकिन इन दोनों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। वो कछुआ वहाँ चला गया, लेकिन चूंकि भगवान का दर्शन कर लिया था अपन नेत्रों से, प्रयास किया, तो अगले जन्म में कछुआ क्या बन गया, केवट बन गया। अब प्रभु वही विष्णु क्यों कौन है, राम के रूप में है, शेषनाग कौन है, लक्ष्मण है, और लक्ष्मी जी कौन है, स्वयं सीता जी हैं। तो इसीलिए भगवान मुस्कुराते हुए कि उसमें तो आप दोनों ने इसको हटा दिया था, हाथ देखिए अड़ गया है हाइक ने, कि आप दोनों ने उस समय तो इसको भगा दिया था, वही कांस कीवट के रूप में अड़ गया है। इसलिए भगवान ने मुस्कुराते हुए देखा। तब भगवान ने क्या कहा कि अब जो तुम्हारी इच्छा है कीवट वही करो। अब फिर उसने क्या किया, एक कठौता पानी भर करके ले आया और चरण प्रक्षालन किया ठाकुर जी का, भगवान राम का, है ना, और खुद पिया, पूरे परिवार को पिलाया, है ना, और बैठा करके और नदी को पार कर दिया, गंगा नदी को। पर राजा रामचंद्र की जय, रघुनंदन जय सिया राम, सब बोले
जय सिया राम,
रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया
राम,
श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम,
जानकी वल्लभ जय सिया राम, राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम,
जय रघुनंदन जय सिया 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 राम, रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम,
जानकी वल्लभ सीता राम,
जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम,
श्री राम जय राम जय जय 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 राम।
इस तरह से भगवान जब उस पार गए तो भगवान कुछ देना चाहते थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। फिर सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाल करके किसको दिया, राम को दिया। राम ने वो अंगूठी केवट के सामने बढ़ाई, लेकिन केवट ने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया, कहे कि जो हमको मिल गया उससे बड़ा तो कुछ मिली कुछ हो ही नहीं सकता। भाई जिसको भगवान का चरणामृत मिल जाए तो कुछ चीज रह जाती है शेष, नहीं लिया। अब भगवान ने क्या किया, वो अंगूठी सीता को वापस भी नहीं दिया, अंगूठी भगवान ने क्या किया, खुद पहन लिया। पहले तो उन्होंने अंगूठी निकाली ऐसे, है ना, जब अंगूठी नहीं लिया तो भगवान ने क्या किया, अंगूठी अब पहन लिया, सीता जी को वापस ले दिया। क्योंकि भगवान जानते थे कि ये अंगूठी भी किसी दिन काम आएगी, काम जब आगे की कथा आएगी तब तब हम अंगूठी के बारे में बताएंगे, अभी इतना ही बताएंगे। तो इस तरह से भगवान गए तो वहाँ पे गुह निषाद सब बड़ा स्वागत किया लेके गए। तो भगवान पहुंचे भरद्वाज मुनि के आश्रम, है ना, इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग। जब वहां पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने उनका भव्य स्वागत किया। अगर आप लोग त्रिवेणी जाए, कभी इलाहाबाद जाने का अवसर मिले तो वहां जाए, भरद्वाज मुनि का आश्रम अभी भी है, बहुत सुंदर आश्रम। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान एक रात रुके है ना। अब फिर भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ जाके ठहरूं है ना। तब उन्होंने कहा कि आप जो है जमुना जी के से आप चित्रकूट जाइए और चित्रकूट में जा करके अपना निवास स्थान बनाइए है ना। तो सुबह भगवान जाते हैं चित्रकूट का प्रस्थान करते हैं। अब उधर भगवान चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ की क्या हालत हो गई, महाराज दशरथ 6 दिन हो गए थे भगवान को 6। जब 6वां दिन आया है ना, तब कौशल्या और दशरथ एक साथ थे है ना, और उसमें भी वो राम के वियोग में संताप कर रहे थे। उन्होंने रोते हुए, क्योंकि 6वां अंतिम रात है, अब इसी रात को हमारा दशरथ छोड़ देंगे है ना, तो उन्होंने क्या किया, कौशल्या से कहा कि मुझे एक घटना याद आ रही। कौशल्या वो कथा उन्होंने सुना कि जब मैं जवान था तो मैं शिकार करने के लिए एक घने जंगल में गया था, और उस दिन संजोग से कोई हमें शिकार मिला ही नहीं था। मैं थक गया था और कोई शिकार नहीं मिला, तो कुछ देर के बाद मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिससे कोई हाथी पानी पी रहा हो या कोई जानवर पानी पी रहा हो, तो पानी पीने की एक आवाज आई। तो मैंने उसको देखा नहीं, तो मैंने अपना शब्द वेदी बाण उसे कहते हैं कि जहां से शब्द निकलता है वहीं पे बाण जाके लगता है, जिस जगह से शब्द निकलता है वहीं पे बाण जाके सटीक। एक कला से महाराज दशरथ के पास ऐसा बाण उनके पास था, शब्द वेदी बाण के कलाकार कौन थे, महाराज दशरथ। तो कहले इसलिए मैं शब्द वेदी बाण निकाला और शब्द की ओर जिधर से शब्द आया और ठीक जाकर निशाना लग गया। लेकिन जैसे ही बाण लगा तो हमें एक इंसान की चीखने की आवाज आई, और जानते हो कौन था, श्रवण कुमार था। कहे कि मैं जब इंसान की चीखने की आवाज सुनी तो मुझे तो होश उड़ गए है ना। जब मैं दौड़ करके गया तो पहुंचे, जब देखा तो उस तो श्रवण कुमार था, वो अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लिया था। तो जब लुटकी से पानी भरा था, तो जब लोटा से पानी भरा जाता है गुड़ गुड़ की आवाज आती है, उसी आवाज को सुनकर उन्होंने बाण मार दिया था है ना। तो श्रवण कुमार ने कहा कि हे राजन, मेरे माता पिता जो अंधे हैं और बहुत प्यासे हैं, अगर उनको पानी लेने के में आया था, अगर पानी नहीं है तो प्यासे शरीर छोड़ देंगे, तो कृपा करके जो पानी है हमारे माता पिता थोड़ी ही दूर पे हैं उनको पानी पिला दीजिए है। लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये बाण हमारे शरीर से क्या करिए निकाल दीजिए। महाराज दशरथ बाण निकालना, क्योंकि बाण निकालने का मतलब होता है कि जैसे बाण निकलता है और प्राण भी साथ साथ क्या हो जाता है, निकल जाता है। जब तो बाण लगा रहता है तब तो प्राण रहता है, लेकिन बाण निकलते ही प्राण भी निकल जाते हैं। लेकिन उसको दर्द हो रहा था तो उन्होंने बाण खींच लिया तो श्रवण कुमार चले गए। अब वो पानी लेकर के डरते हुए एक कथा सुना रहे किसे, कौशल्या से, कि मैं पानी लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास गया। तो उन्होंने तो सोचा कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी अब मैं बोले की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ, सच्चाई बताना पड़ा। जैसे ही उन्होंने मैंने ये सब बताया है ना, तब उन्होंने क्या किया, हमको श्राप दे दिया कि जिस तरह से आज मैं अपने बेटे के लिए बिलख रहा हूँ, उसी तरह से आप भी के भी प्राण जो हैं निकलेंगे अपने बेटों को तरसते हैं। तो ये पूरी कथा हम आपको एक लाइन में सुनाते हैं, इस श्रवण कुमार की जो कथा है हम एक लाइन में सुनना चाहेंगे, एक लाइन में कथा सुनना चाहेंगे, ये पूरी स्टोरी कि एक के मारे एक मरा, एक कौन हुए, राजा दशरथ। और दूसरा एक कौन हुआ, श्रवण कुमार, है ना। तो एक के मारे एक मरा और दो मरे संदेशे, दो कौन हुए, श्रवण कुमार के माता पिता। तो एक के मारे एक मरा और दो मरे संदेशे, जब संदेश मिला तो दो मर गए, तो कितने मर गए, तीन मरे कि नहीं, एक के मारे एक मरा, है ना, और दो मरे संदेश से। अब मारने वाला तब मरा जब तीन चले परदेश से, एक से पूरी कथा एक लाइन में याद कर लीजिए कि मारने वाला तब मरा जब तीन चले परदेश से। तीन कौन, राम लक्ष्मण और सीता, जब वन को चले गए तब कौन मरा, मारने वाला। तो याद कर लीजिए स्टोरी कि एक के मारे एक मरा, दो मरे संदेश से, अब मारने वाला तब मरा जब तीन चले परदेश से। तो इसलिए हे कौशल्या अब मेरा प्राण निकल गया, एक कथा सुनाते ही जैसे कथा समाप्त हुई महाराज दशरथ का प्राण भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, कई श्राप था। यही कथा सुनाते सुनाते दशरथ जो है शरीर छोड़ दिए और उसी समय पूरे रोना पीटना शुरू हो गया, है ना, और उनका दाह संस्कार किया गया। तुरंत जो है दो पांच दूत भेजे गए, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न को लाने के लिए, वो लोग ननिहाल में थे, भगवान तो इसमें चित्रकूट पहुंच गए हैं लेकिन यहाँ अयोध्या की हालत इतनी खराब हो गई है। वो दौड़ करके भरत जी आए, है ना। अब भरत जी जैसे ही उनको दूत पहुंचे कि अचानक आपको अयोध्या बुलाया गया, भरत को ये नहीं बताया गया, है ना, कि आप जो हैं कि आपके पिता जो थे, ये नहीं बताया गया, बस उनको ये संदेश दिया कि आप तत्काल इसी वक्त जो है आ जाए अयोध्या में। तो भरत और शत्रुघ्न जब वापस आने लगे तो जो दृश्य देखा, है ना, पूरे बाग बगीचा सब मुरझाए हुए और कोई बोल नहीं रहा था, बताया गया कि हिरण वगैरह सब रो रहे थे, सब पूरा पशु पक्षी राम के वियोग में, दशरथ के वियोग में, पूरा माहौल। भरत जी घबरा गए थे कि क्या हो गया, दौड़ करके तो अपने पिताजी के घर में गए, वहाँ पिताजी को नहीं देखा, तो जैसे ही वहाँ पे जो कैकेयी थी, कैकेयी के पास गए तो कैकेयी ने कहा, कैकेयी के पास जैसे ही भरत पहुँचते हैं तो कैकेयी बड़ी खुश हो जाती है, है ना, लेकिन भरत तो ही जानना चाहते हैं कि हमारे पिताजी कहाँ हैं। तो कैकेयी के पे धीरज रखो, धीरज करो, पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं है, है ना, उसने सीधा बोल दिया, बड़ी कड़क थी वो, एक तरह से कह सकते हैं, उसने ऐसे कह दिया कि वो तो इस पृथ्वी पर नहीं है लेकिन तुम राजा बनोगे, क्योंकि मैंने दो वचन मांगा है तुम्हारे लिए, राजा और राम को हमने तो बन भेज दिया, अब बेटा तुम राजा बन करके राज करो और तुम्हारा 14 साल तक ले निष्कंटक राज करो, है ना। जमीन खिसक गई कि भरत बिना राम के रह ही नहीं सकते थे, है ना, उन्होंने इतनी गालियां दी, इतना डांटा अपनी कि तुम दुष्ट आओ, ऐसा बहुत डांट लगाई, है ना, और मैं ऐसा नहीं करना चाहते। फिर कौशल्या जब कौशल्या के पास गए तो कौशल्या ने व्यंग माना कि अब आगे राजा बनने के लिए, है ना, भरत को कुछ पता ही नहीं था, तो कहीं माता आप क्या बोल रही हैं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, है ना, तब उन्होंने बताया तो उनको बहुत दुख हुआ, है ना, शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। इतने मंथरा दिखाई दी गई जब मंथरा दिखाई दी तो जो शत्रुघ्न जी थे वो दौड़ करके कुबड़ी को पकड़ करके ले आए कि यही दुष्ट डाइन है जिसकी वजह से पूरी अयोध्या का वातावरण क्या हो गया, गमगीन हो गया है, इसको तो मैं भी तुरंत मार देता। वो तो डर ही गई क्योंकि गुस्से में तो शत्रु के मार ही डालते। लेकिन भरत ने क्या किया, समझाया कि नहीं शत्रुघ्न ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके प्राण बचे, दौड़ करके केकी के पास गए। अब जानते क्या, वो जब इतना गालियां दिया केकी को, उनके बेटे नहीं है ना, कि तुम दुष्ट हो, हमें से ऐसे सोच कह सकती हो। हुआ क्या कि इस तरह जब भरत बोल रहे थे केकी से, तो केकी के ऊपर जो सरस्वती का असर था वो क्या हो गया, सब अपने होशोहवास में आ गई। जब उसको होश आया तब सब बिखर चुका था। स्थिति थी तो कहके भी रोने लगी सब, क्योंकि भी तो सरस्वती की वजह से यह समय था, क्योंकि देवताओं ने बहका दिया था, क्योंकि देवता तो अपने स्वार्थी, अपनी सुरक्षा की उन्हें चिंता थी, है ना। तो इस तरह अब कैकेयी को उसका तो हमारे साथ बहुत बड़ा हो गया। अब क्या हुआ, तो वशिष्ठ जी आए, कहके देखो कुछ भी हो लेकिन राज, क्योंकि राजा बनाना बहुत जरूरी। भरत ने कहा नहीं, अब जितने भी अयोध्या वासी हैं सब के सब तैयार हों, हम सब चल करके भगवान राम को वापस लाएंगे अयोध्या, सब तैयार। क्योंकि पता गया है कि 100,000 हाथी घोड़े सब पूरी प्रजा जो है लाने के लिए सजाओ सब, क्योंकि हम चलेंगे, रानियां तीनों रानियां ये सब चले, एक कई दुष्ट भी चले सब। अब कई के दिमाग खुल गया क्योंकि अपने सही स्थिति में आ गई। अब पूरा माहौल, अब अयोध्या वासी थोड़े से खुश हो गए बेचारे कि अब हम क्या करेंगे, अयोध्या माने भगवान कम से कम एक बार तो दर्शन होगा, जब चलेंगे उनका दर्शन करेंगे, अब मनाएंगे सब लोग, क्यों नहीं आएंगे। तो सबको विश्वास हो गया था कि जब हम लोग सब प्रार्थना करेंगे तो भगवान आएंगे आएंगे वापस। अब भरत भी क्या किए, जिस तरह से भगवान अपना भेष बदल करके गए थे उसी तरह से भरत अपना भेष बदला, और सब मिल करके पूरे अयोध्यावासी पूरी तैयारी की गई। क्योंकि देखो राजा कितना भी, भरत राजा तो हैं, राजा महाराजा जब चलते हैं तो जैसे आप लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को आते हैं तो पूरा रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, राइट, उसी प्रकार से पूरा रास्ता जो है सब तैयार किया गया है। और बाहर भरत के साथ सब लोग, वशिष्ठ मुनि सुमंत जितने भी थे, सब पूरी प्रजा चल दी है ना। इस पूरा जब लोग चले तो फिर वहीं पे आए, गंगा नदी आई, तो उस समय तो एक ही नाव थी, तीन ही लोग थे है ना। तो जानते हैं तो जो निषाद राज थे 500 नाव की व्यवस्था की, कितनी 500 नाव पे, बड़ी नाव पे बैठा करके सबको जो है उस पार ले गया। फिर गुह जो मिले थे भगवान राम को है ना, उनके पास भगवान भरत जी रुके वहाँ पे है ना, और कहा कि आप कृपा करके भगवान के बारे में बताइए। पहले गुह ने सोचा कि शायद मारने के लिए जा रहे हैं राम को, लेकिन जब भरत का प्रेम देखा तो भी द्रवित हो गए, कहे कि चले इधर गए। तब अब भरत पहुँचते हैं कहाँ, इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग, किसके आश्रम में, भरद्वाज मुनि के आश्रम, कि भरद्वाज मुनि के ही आश्रम में ठहरे हुए थे, कौन, भगवान राम भी वहाँ रुके थे। तो जब भरत जी वहाँ पहुँचे, अब इतनी बड़ी सेना के पास से के साथ जब पहुँचे, तो महाराजा जो भरद्वाज मुनि थे वो पहले ही समझ गए थे भरत जी के भाव कितने अच्छे हैं, फिर भी उन्होंने प्रश्न किया कि आप किस ले आए हैं। तो बताया कि मैं जा रहा हूँ भगवान राम को, भगवान भरद्वाज ने कहा कि मैं तो समझ लिया था, लेकिन हम फिर भी पूछना चाहते थे, तो कहे कि आज आप लोग जैसे भगवान राम विश्राम किए थे, एक रात आप लोग हमारे यहाँ विश्राम करो, हम सबको आपको खाने पीने की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अब देखिए क्या दृश्य कैसे बदलता है। भरद्वाज मुनि ने तुरंत इंद्र को आवाहन किया, कुबेर को आवाहन किया, विश्वकर्मा को आवाहन किया, है ना, जो बड़े बड़े देवता थे, प्रमुख देवता, सबसे बोला कि आज राजा भरत पूरे अयोध्या वासियों के लेकर आ रहे हैं, भगवान राम के पास जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मिलकर के इनका भव्य स्वागत, खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए। ये किसने कहा? भरद्वाज मुनि ने। किससे कहा? इन प्रमुख देवताओं से। जानते क्या हुआ? जैसे ही भरद्वाज मुनि का आदेश हुआ, सबके देखते ही देखते है ना, पूरा दृश्य बदल गया वहां का, तीर्थराज प्रयाग का, स्वर्ग से भी खूबसूरत जगह जो है वहां पे बन गई, बड़े बड़े महल है ना, और करीब 20,000 जो स्वर्ग लोक की सबसे ज्यादा खूबसूरत अप्सराएं थी वहां पे आ गई। जितने सैनिक थे, हर सैनिक के पीछे एक आठ आठ अप्सराएं उनकी सेवा में लग गई। एक के पीछे कितनी अप्सराएं? आठ। अब सब उनको मालिश कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर रहे हैं। जितने सैनिक थे, सारे राजा महाराजा, सबके लिए इतने खाने पीने की व्यवस्था, पूरा खीर की नदी बना दी थी, है ना, जितना खीर खाना हो खाओ, वो भी अमृत खीर, जो देवताओं की खीर होती है, दिव्य खीर। पूरा वातावरण स्वर्ग से इतना था। जितने घोड़े थे उनको शहद पिलाया गया ताकि वो भी थोड़ा नशे में झूमे, है ना, अर्थात पूरा वातावरण स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत, है ना। एक किसके आदेश से हुआ? भरद्वाज मुनि के आदेश से। देवता लोग चाहें तो एक क्षण में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। उनके देखते पूरी रात ऐसे जश्न मनाया गया कि वो लोग जितने भी अयोध्या वासी थे, जितने भी सैनिक थे, सब इतने आनंद, क्योंकि इतना बड़ा आनंद उनको कभी मिला ही नहीं था। जिन अप्सराओं का नाम सुनते थे कि देवलोक में सब अप्सराएं होती हैं, आज वही अप्सराएं उनकी सेवा कर रहे हैं, चंपू कर रहे हैं, है ना। अब इससे बड़ा आनंद उनको क्या हो सकता है? इतने मस्त हो गए, सब जाते क्या बोले लगे कि अब हम लोग यही रहेंगे, हम अयोध्या जाएंगे ना, चित्रकूट जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, जीव इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जीव जब इस तरह से माया में भ्रमित हो जाता है, तो जो लोग राम के पास जाना चाहते थे कहे हम कहीं नहीं जाएंगे, इससे शिक्षा मिलती है। जैसे एक बार एक राजा थे, दृश्य याद आ गया, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने कहा कि कल सुबह हमारे पूरी प्रजा का व्यक्ति जो पहले मेरे पास आ जाएगा, सुबह होते ही उसको मैं क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा। एक ढिडोरा पिटवा दिया पूरे राज्य में, सारे शाम को जो है ढिंडोरा पिटवा दिया गया, और रात भर बूढ़े जवान बच्चे सब जागते रहे क्योंकि सबको राजा बनना था। जैसे आप लोग जितने बैठे हो सब राजा महाराजा बनना चाहते, नहीं बनना चाहते भाई, कौन नहीं कर्णपति बनना चाहता है, नहीं है, नहीं सब जितनी प्रजा थी सब राजा बनना चाहते थे। तो कोई रात भर सोया ही नहीं, कोई सोया ही नहीं, सब पसे लगी कहीं ऐसे हम नींद में आ जाए, हम पहुंच ही ना पाए। राजा बनने का बड़ा आसान तरीका है, बस पहले ही पहुंचना है। राजा ने क्या किया था? रात में जो मेन कपाट था राज दरबार का बंद करा दिया था, और बंद करा दिया था। पूरी जब सुबह हुआ तो सारे लोग पहले पहुंचने के चक्कर में बड़ी भीड़ मच गई वहां पे। सब थका देखे दरवाजा खोले कि दरवाजा खोले, हम दौड़ करके राजा के पास पहुंचे। सारी प्रजा भीड़ी भीड़ गई। तब राजा ने आदेश दिया है ना कि जो मेन गेट है, बड़ा दरवाजा है, उसको खोल दिया जाए है ना। जैसे ही दरवाजा खुला, वहाँ का जो दृश्य था कुछ इसी तरह का था जो दृश्य यहाँ पे है भरद्वाज मुनि का आश्रम, ऐसी दृश्य था। तो राजा ने क्या व्यवस्था करे थे कि जैसे ही दरवाजा खुला तो इतना साइट सीन, इतना सुंदर वातावरण क्रिएट कर दिया था वहाँ पे। तो जो लोग सुंदरता के थे, जो जिनको सुंदरता पसंद थी, नेत्रों के जो कमजोर थे, वो लोग वहाँ पे फंस गए। क्योंकि अभी प्रजा बिचारी कहाँ ऐसा दिव्य जगह देखा है, और जब इतना सुंदर दृश्य देखा वो देखने में फंस गए है ना। तो कुछ लोग तो वहीं फंस गए सिर्फ साइड सीन दृश्य देखने में है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, संगीत की बहुत अच्छी व्यवस्था की, ऐसी संगीत संध्या उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दी थी। तो जो कान के कच्चे थे है ना, वो संगीत में फंस गए है ना। और संगीत के नहीं नहीं हम तो यहीं झूमेंगे आनंद में, और संगीत में फंस गए। जो लोग जीवा के लोलुप थे, जिन पे जीवा पर खाने पीने पर कंट्रोल नहीं था, इतना व्यंजन, इतनी प्रकार की वैरायटी, दुनिया की कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं होगी जो कि राजा ने नहीं बनवाया था है ना। सब एक से बढ़कर एक फैन है। और उसको खुशबू, इतना सुंदर खुशबू का वातावरण कर दिया। तो जो जीवा और नाक के कच्चे थे वो सब सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच गए और खाने में लग गए है ना। ये भूल गए कि उनको राजा बनना है सब खाने पीने सोने। और जो दूसरे टाइप के लोग थे है ना, उनके लिए इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं वेश्याओं की व्यवस्था कर दिया था कि सब उसमें फंस गए है ना। चारों तरफ आनंद जो है सब रोटी में लग गए। जिसके जो कमजोरी थी अपने उसी कमजोरी में क्या हो गए, फंस गए। ये भूल गए कि रात भर जागे थे राजा बनने के लिए, लेकिन भगवान ने ऐसा उनकी इंद्रियों के जाल में फंसा दिया कि ये भूल गए कि उनको राजा बनना है। उसमें से अब राजा बेचारा इंतजार कर रहा है कि इतना देर हो गई और अभी तक हमारे तक कोई पहुंचा नहीं। इतना कम कि हमारे प्रजा के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, वो राजा ही नहीं बनना चाहते। अब राजा क्या पता कि सब फंस गए हैं खाने पीने, अपने अपने तृप्ति में लग गए हैं। और बेचारा बार बार घड़ी देखे, समय देखे, कभी तक कोई पहुंचा नहीं। तो एक व्यक्ति जो है बड़े मुश्किल से एक व्यक्ति पहुंचा और राजा ने उसको राजा बना दिया। तो वो राजा कौन है, भगवान कृष्ण है ना। जो चाहते हैं कि आप लोग मेरे पास आओ, लेकिन इस संसार में हम आकर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इसीलिए गीता भगवान कह कि अर्जुन जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले कछुए की तरह, वही मेरे पास आ सकता है ना। तो भगवान ने इस संसार को इस तरह से बना दिया गया है कि इस संसार में इंसान आकर के और क्या हो जाता है, फंस जाता है। हम लोग सब फंसे हुए हैं, हमें भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य भूल जाते हैं, अभी लक्ष्य भूल गए। लेकिन जिसने अपने इंद्र पर कंट्रोल करके लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहा, वही पहुंच जाता है। गीता भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं, रेयर होते हैं। उसमें से हजारों हजारों करोड़ों में से एक आदमी भगवान के पास क्या हुआ, वो राजा के पास पहुंचा और भगवान उसको राजा बना दिया। तो यही स्थिति इन भरत के सारे अयोध्या वासियों की थी कि भरद्वाज मुनि के आसन जा करके ऐसी व्यवस्था कर दी कि सर एक कहने लगे अपने मुंह से कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे हम यही रहेंगे। लेकिन जाते क्या हुआ कि जैसे ही सूर्योदय हुआ, जितना ताम झाम था सब क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। फिर अपने अपने असलियत में सब आ गए, न कहीं अप्सरा, न कहीं पकवान, न कोई संगीत, न कोई महल, और जैसे आए थे सब वैसे दिख रहा था। इससे क्या सच्चा, यही एक स्वप्न जैसा है, दीवार स्वप्न जैसा। तम उन्होंने कहा कि अब आप जो हैं बढ़िए। तब वो लोग भी चित्रकूट की ओर जाते हैं। अब राम और लक्ष्मण बैठ करके एक शिला पर के बात कर रहे थे, उसी समय उनको धूल उड़ती हुई दिखाई दी, है ना। जब धूल उड़ती हुई दिखाई दी तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जरा देखो, कुछ शोरगुल सुनाई दे रहा है, और जो पक्षी हैं उड़ के भाग रहे हैं, और जो जंगली जानवर हैं वो भी इधर उधर भाग रहे हैं, और बड़ा शोरगुल जैसे कोई सेना आ रही है ऐसे, और कुछ धूल उड़ रही है, जरा देखो पेड़ पर चढ़ करके क्या हो रहा है। और लक्ष्मण जी इन सब काम के लिए सदैव तैयार रहते थे, है ना। वो तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और देखा, है ना, और तुरंत तेरे भैया जल्दी सारे तलवार अस्त्र निकाल लो, है ना, सीता जी को सुरक्षित करो कि कोई सेना आ रही है ना हम लोग को मारने के लिए, हम उसको मारेंगे, है ना। तो भगवान राम ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, दोबारा चढ़ करके देखो कि जो सेना आ रही है उसका ध्वजा कैसा है, कि ध्वजा से एक पहचान में आ जाता है कि सेना किसकी है, कि हर राजा का एक पताका होता है, राइट, उसमें चिन्ह होता है। जैसे अर्जुन के रथ पे जो पताका था उसमें किसका चिन्ह था, हनुमान जी थे, है ना। जैसे सब चिन्ह होता है, तो हनुमान जी जो थे अर्जुन के रथ के ऊपर जो पताका था उसमें बैठे थे। इसीलिए जब कर्ण का और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तो जब कर्ण बाण मारता था जानते क्या होता था, कि तीन हाथ पीछे रथ अर्जुन का चला जाता था, और जब अर्जुन बाण मारते थे तो सौ हाथ चला जाता था। लेकिन कृष्ण तारीफ किसकी करते थे, कर्ण की। तो अर्जुन ने पूछा कि जनार्दन ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं मारता हूँ तो सौ हाथ पीछे जाता है, और मारता है हमारा से तीन ही हाथ खिसकता है, लेकिन आप तारीफ किसकी कर रहे हो, कर्ण की। तो कहे अर्जुन सारे तीन लोगों का भार लेकर के मैं खुद बैठा हूं, है ना। कर्ण कितना बहादुर है ना, कि तीनों लोगों का भार लेकर के मैं खुद बैठा हूं रथ पर, रही सही कसर हनुमान जी पूरा किए, वो भी बैठे आपके पता कब। कर्ण कितना बहादुर है कि इतना वजन होते भी पीछे कर रहा है, तो बहादुर तो है ही वो। अर्जुन चुप हो गए। तो पताका जो होती है ये पहचान होती राजा की। तो दौड़ करके फिर चढ़ गए पेड़ पर लक्ष्मण जी, और उन्होंने जब देखा तो वो ध्वज का जो पताका था किसका था, अयोध्या का था पताका। तब तो आग बबूला हो गए क्रोध में, ओ भरत आ रहा है हम सबको मारने के लिए, भैया तुरंत तैयार हो जाए, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, है ना, हमको यहाँ नहीं भी रहने दे रहा है, इतना राजा का लोली बन गया है। भगवान राम ने फिर उनको क्या क्या समझाया कि भरत ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है वो मुझे राज्य वापस दाने की भूल कर रहे हैं, तो जब तक नहीं मिल लेते तब तक हम ऐसा क्यों सोचें। इसीलिए हमें कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी क्या सोचते हैं लोग, सोचते हैं हर चीज निगेटिव पहले लेते हैं, है ना। हमें हालात को पूरा देख करके तब डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है उतने में जब ये सब चर्चा हो रही थी, तो भरत जी जो है अपने बड़े ताम झाम के साथ आकर के चारों तरफ जो है फैला, सारे इतने सैनिक पूरे अयोध्या के लोग आए थे। भगवान राम जो हैं है ना, भगवान राम। अब भरत, जैसे ही भरत ने राम को देखा, दंडवत प्रणाम करके और एकदम चिपक चिपका लिया, आलिंगन किया, और दोनों के आंखों से आंसू क्या हो रहे हैं, भर रहे हैं। भाई हो तो ऐसा, आजकल के भाई होते ओ वेल डन मम्मी मम्मी कह कह के बोलते हैं, क्या उन्होंने बड़ा अच्छा किया, मुझे राजा बुला दिया और मेरा जो कंटक था उसको भी 14 साल क्या कर दिया, बरी कर दिया। ये कहते कि नहीं कहते, आजकल के अगर भाई लोग होते तो कितना खुश होते कि वेल डन मम्मी वेल डन, बड़ा अच्छा किया है ना, मुझे राजा बना दिया है। लेकिन भाई का प्रेम किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। हमें शिक्षा लेना चाहिए एक भाई के प्रति दूसरे भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए, राम और भरत जैसा होना चाहिए। ये शिक्षा है कि भरत जो है किस तरह से राम ने, फिर भगवान राम ने भरत जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा। जैसे ही उन्हें पता चला कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान राम और लक्ष्मण काफ़ी देर तक रोए, उसके बाद फिर जल तर्पण किया, फिर कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, ये तीनों जो हैं सफ़ेद साड़ी में ये लोग भी आए थे है ना, ये लोग मिले। कैकेयी बहुत सोचा रहे थे और राम से मिलना नहीं चाहते, किस मुँह से मिले हैं, लेकिन भगवान राम स्वतः जा करके अब माता कैकेयी का चरण पकड़े है ना। देखिए भगवान ने इतना अच्छा सम्मान दिया कैकेयी, वास्तव में कैकेयी के बारे में बताया गया शास्त्र में कि हम लोग अपने बच्चियों का नाम कैकेयी रखते हैं कोई कैकेयी नहीं रखता, कौशल्या सुमित्रा सब रखते हैं, कैकेयी क्यों रहता, लेकिन रखना चाहिए क्योंकि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं था। अगर कैकेयी और मंथरा का रोल को निकाल दिए जाते कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, आसोगे नहीं। ये तो भगवान की लीला की एक कड़ी थे, भगवान ने कैकेयी से, भगवान ने यही बात कही अकेले में जा करके, जो बात हुई यही बात हुई है ना कि माता आपको तो पता है ये सब विधान था कि आपकी वजह से तो इन राक्षसों का क्या हो रहा है, उद्धार इस उद्धार होगा। तो इसीलिए कैकेयी जो है भक्ति भक्त की जो आते कैकेयी का भी स्थान आता है कि वो भी भगवान की सेवा में क्या किया, भगवान की लीला में एक रोल अदा किया कैकेयी का, ये था। तो भगवान ने बड़ा सम्मान आदर दिया। अब भगवान राम और भरत आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भरत बार बार कर रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं। भगवान बार बार उनको समझा रहे हैं कि देखिए ये पिताजी का आदेश है, भरत पिताजी का ये आदेश है कि तुम राजा बनोगे और मैं वन में रहूंगा, तो मैं तो अपना वचन पूरा कर दिया, वन में आ गया हूँ, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, राजा बनना पड़ेगा। भगवान के तर्क के सामने सबका तर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसलिए कुल जो 64 दिव्य गुण हैं उनमें एक क्वालिटी होती है वाक्पटु। भगवान राम और कृष्ण दोनों बात करने में क्या है, मास्टर वाक्पटु। उन्होंने बार बार इसी यही कि देखो पिता की आज्ञा का पालन करना ये हम सब भाइयों का कर्तव्य है। अब पिता ने हमें आदेश दिया है बन जाने के लिए 14 वर्ष तक, और आपको जो है राजा आप ही बना। लेकिन भगवान राम जो है उनको मना लिया भरत को, भरत कहे कि भैया फिर कुछ तो करना पड़ेगा है ना। भरत जी ने कहा कि आप हमें अपने क्या कर दीजिए, चरण पादुका दे दीजिए है ना, क्या दे दीजिए, चरण पादुका। तो जो खड़ाऊ थी है ना, खड़ाऊ भगवान ने क्या किया, उस खड़ाऊ अपनी जो चरण पादुका है उसको भरत जी को सौंपा था। भरत जी ने कहा कि राज सिंहासन पर हे भैया एक खड़ाऊ रहेगी, है नहीं? और मैं आपका एक दास बन करके आज्ञा का पालन करके प्रजा का मैं पालन करूंगा, लेकिन राज सिंहासन में कौन बैठेगा? एक खड़ाऊ बैठेगी, खड़ाऊ। और वो खड़ाऊ ले करके अपने सर पे रख करके, और राजा भरत जो हैं क्या किए, वापस अयोध्या की ओर चल देते हैं। अब इधर राजा भरत अयोध्या की ओर चलते हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी ने कहा कि देखिए वार्तालाप किया है कि देखिए भरत कितना अच्छा भाई है, है ना? ऐसा भाई मिलना क्या है, आसान नहीं है, है ना? भाई हो तो भरत जैसा हो, है ना? कि इतना बड़ा राज्य वो पिताजी दे रहे हैं और नहीं ले रहा है, किसके लिए? मेरे लिए। कहता नहीं नहीं आपको ही बेटा चाहिए, आप बड़े भाई हो। और आजकल ऐसा हो छोटा भाई क्या करे, बड़े भाई ऐसी तैसी हम राजा बनेंगे, है ना? कोई भैयापन नहीं रह गया आज के जमाने में। कलयुग इतना प्रबल हो गया कि अब छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं रह गया है, जबकि हमें लिहाज रखना चाहिए, है न? भगवान राम की जो कथा है बहुत शिक्षात्मक है, है ना? इससे एक एक लीला से शिक्षा होती है, है ना? अब भरत जी जब वापस अयोध्या गए तो जितने भी अयोध्या वासी थे, है ना, सब अपने घरों में गए और भरत जी ने कहा कि मैं भी 14 वर्ष तक उसी तरह से रहूंगा जैसे हमारे बड़े भाई राम वहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने भी तपस्वी का वेश धारण किया, और जो भगवान राम खाते हैं वही मैं भी खाऊंगा। ये नहीं कि मैं अब राजा बन गया हूँ तो मैं पूरा मालपुआ खाऊंगा, 56 प्रकार का भोग लगाऊंगा और बेचारे कंदमूल खाएंगे, ऐसा नहीं। देखो इसे कहते भाई, हमें शिक्षा लेनी चाहिए भाई भाई से, क्या कैसे प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, है ना? जानते हैं भगवान राम इन भाइयों के बारे में क्या सोचे थे उस समय जब उनको राजा बनाने की बात जब उनको पता चली, तो भगवान ने जानते हैं क्या सोचा था? उस भगवान ने सोचा था कि एक कैसा न्याय है कि हम दोनों भाई एक साथ प्रकट हुए, तो भगवान सोच रहे हैं अपने तीनों भाइयों के बारे में, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के बारे में। भगवान ने सोचा कि एक कैसा अन्याय हो रहा है कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले कूदे, पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा ली स्तर की, और जब राजा बनाने की बात है तो मुझे अकेला ही राजा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा कोई भाई सोच सकता है आज के जमाने में? भगवान ऐसा सोच रहे हैं, यही भगवान का बड़प्पन है। इसी तरह राम की पूजा होती है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि भगवान ने हर जगह मर्यादा रखी, है ना? भगवान की सोच देखिए, वो भगवान ऐसा सोच रहे थे, है ना? बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया शास्त्र में कि भगवान कहे कि ऐसे कैसे, इसलिए हम जो है सबको मिल करके ये राज चलाएंगे। अगर हम राजा बनते हैं तो सब भाइयों को लगाएंगे, इनको एक काम दूंगा, इनको वो काम दूंगा, सब मिलजुल के टीम वर्क करना चाहिए। पूरी लीला में आप देखेंगे कि भगवान राम जब आगे कथा जब आपका सुनेंगे किस तरह से भगवान टीम वर्क उनके साथ तैयार होती है, किसे एक साथ, ये नहीं कि हम ही हम हैं, है ना? ऐसा नहीं, सबको मिला करके चलना, ये भगवान राम सीखना चाहिए, है ना? तो वही तो चूंकि भगवान राम अपने भाइयों के प्रति इतना सोच रहे हैं तो भाई भी उनके बारे में कैसा सोच रहे हैं, इसे कहते भाई भाई का प्रेम। ये शिक्षा लेना चाहिए, है ना? भरत जी जो है नंदीग्राम जो अयोध्या से थोड़ी सी शहर से दूरी पे बसा, नंदीग्राम को उन्होंने चुना और वहाँ पे खड़ाऊ रख करके और खुद एक कुटिया जैसा बना करके वहीं पे रहना आरंभ किया। अब वही जमीन पर ही सोना बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ पे उस माता जानकी वन में रह रहे हैं उसी तरह से उन्होंने पूरा वातावरण क्रिएट करके रहना आरंभ कर दिया। और रोजाना सो उठ करके है ना भगवान के जो चरणपाद क्या है उस पे पुष्प चढ़ाते थे और उसका दंडवत प्रणाम करते थे, अर्थात चरणपादिका को भगवान का चरण ही समझते थे। ये भाई का प्रेम देखिए, यही तो हमें कोई इष्ट इच्छा लेनी है, ये शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए कि भाई के साथ अगर प्रेम हो तो कैसा हो, भरत जैसा, भरत और राम की जो भाई भैयप्पन जो जोड़ी है कैसे फेमस है इस तरह से कि सब एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, है ना। और उसी तरह से बिल्कुल बनचारी की तरह भरत रह करके और इंतजार कर रहे हैं किसका, भगवान के आने का। तो यहाँ पे कथा जो है यहाँ पे स्टॉप होती है। अब कल से जो कथा होगी वो बढ़ेगी कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता जो है चित्रकूट से आगे की ओर बढ़ेंगे और अरण कांड की जो कथा होगी वो कल शुरू होगी। हरे कृष्णा।
हरे
तो आरती होगी, सब लोग खड़े हो जाएंगे, पूरी आरती में रहना चाहिए, है ना, कि प्रसाद नहीं भागा जा रहा है, प्रसाद तो रहेगा ही रहेगा, आप ही के लिए बनाया तो पूरा आनंद उठाएगा।
हम सभी हाथ उठा के गुरु जी का धन्यवाद करेंगे। हरि
बोल, हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल,
हरि बोल। हम गुरु जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
आए दुबे जी आए,
हमारे आज के अरमान जी के दुबे जी हमारे बीच में हैं, उनका धन्यवाद करते हैं आज के सुना प्रसाद के जो उन्हीं के पास है अभी आरती होगी, उसके बाद अब सभी के लिए गोविंद द्वारा आयोजित प्रसाद है अब प्रसाद।
श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय तारुणम।
श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय तारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
कंदर्प अंगरित अमित छदुनम नील नीरज सुंदरम।
कंदर्प अंगरित अमित छदुनम नील नीरज सुंदरम।
पट पीत मानम परित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम।
पट पीत मानम परित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम।
भजु दीन बंधु दिनेश कानव कैकवंशन कंदनम।
भजु दीन बंधु दिनेश कानव दुष्ट दलनन कंदनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम।
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण
शरणम
आजान भुज शरताप दर संग्राम चित कर दूषणम
आजान भुज शरताप दर संग्राम चित कर दूषणम
उपवदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम
मम हृदय कंद निवास कर कामादि दल दल दंजनम सहज सुंदर सावरो
मन जाहि राज मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो
करुआ निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो
करुआ निधान सुजान सील स्नेह
हर सी अली
एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हि हर सी अली
तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि उदित मन मंदिर चले
तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली
श्री राम चंद्र कृपाल भजन हर भव भय दारुण
श्री राम चंद्र कृपाल भजन हर भव भय दारुण
बोलो श्री श्री
रामचंद्र
भगवान की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री प्रभुपाद की।